तो चलते हैं अगले टिप पे। अल्लाह ताला गुनाह माफ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। क्या अल्लाह ताला की इस फरमान, आप कह दीजिए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, वो गफूर और रहीम है। इससे आपके सीने को ठंडक नहीं मिलती? मिलती है ना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और आपका गम व अंदोह दूर नहीं होता। इस फरमान में अल्लाह ने इन्हें मेरे बंदो कहकर खिताब किया। हम कहते हैं इनको मुंह ना लगाओ, ये गुनाहगार हैं, ये जानी, ये शराबी, ये पापी, और अल्लाह ताला कहते हैं या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। साहबा कहते सबसे ज्यादा मैं खुशी इस आयत को सुनकर हुई थी। तो दिल तो ठंडा होता है, और क्या आपका गमो अंदो दूर नहीं होता। इस फरमान में अल्लाह ने इन्हें मेरे बंदो कहकर खिताब किया कि इनकी तालीफ़ कल्ब हो, इनकी रूहों को सुकून मिले। खास मुखातिब है मुसरफीन, इसराफ करने वाले, ट्रांसग्रेशंस करने वाले, ज्यादा गुनाह करने वाले। जब इनका ये हाल है तो दूसरों के साथ तो बदरजे उला ये मामला होगा, यानी गुनाहगारों को अल्लाह कहते हैं उम्मीद रखो, तो जो नेकियां करते हैं उनके साथ तो अल्लाह का क्या खूबसूरत मामला होगा। इनको इससे रोका है कि वो मग़फ़रत से मायूस हो जाएं, और बताया है कि तौबा करने वाले के तमाम गुनाह, छोटे हों या बड़े, कम या ज़्यादा, वो माफ़ कर देगा। फिर अपने बारे में ताकीदन बताया कि वो गफूर रहीम है। गोया के कुल तारीफ कमाले सिफत का मतकाजी है, यानी सारी तारीफें उसके लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक और जगह फरमाया, वो लोग जिन्होंने बुराई की या फिर अपने ऊपर जुल्म किया, उन्होंने अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों पर इस्तग़फार की, और अल्लाह के अलावा कौन है जो माफ़ करने वाला है, और उन्होंने जानते बूझते अपने गुनाहों पर इसरार नहीं किया। सूरह आल इमरान 135। और फरमाया, जो शख्स गुनाह करता है वो अपने ऊपर जुल्म करता है, फिर अल्लाह से इस्तग़फार करता है, वो अल्लाह ताला को बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला पाएगा। और फरमाया, अगर तुम कबायर से दूर रहो तो हम हाँ तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और तुम्हें इज्जत और बुजुर्गी की जगह पर दाखिल करेंगे। और फरमाया, जिन्होंने गुनाह किए और अपने ऊपर जुल्म किए, अगर तुम्हारे पास आ जाएं और अल्लाह से इस्तिग़फार करें, रसूल भी इनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें, तो वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाएंगे। और एक जगह फरमाया, हाँ बेशक मैंने बख्श देने वाला हूँ, जो तौबा करें, ईमान लाएं, नेक अमल करें और आहे रास्त पर भी रहें। आप देखिए ये आयतें कितनी ठंडक दिलाती हैं, और ख़ास तौर पे मग़फ़रत और बख्शिश की बातें। हमारे पास एक ऑडियो में ये सारी आयतें इकट्ठी तिलावत शुदा हैं, यानी एक कारी के आवाज़ में एक आयत तो दूसरी की, और वाकई उसको सुनकर दिल की अजीब हालत होती है। शर्त एक है, क्या आपको तर्जुमा समझ में आ रहा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब एक आदमी को कत्ल कर दिया तो फरमाया, मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, इसलिए मुझे माफ़ फरमा दे। बस अल्लाह ने इनको माफ़ फरमा दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तौबा और इनाबत की तो इनके बारे में कहा गया, हमने इनको माफ़ कर दिया, इनके लिए हमारे पास कुर्बत और अच्छा ठिकाना है। अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़रत के क्या ठिकाने हैं, इसने अपनी रहमत के दरवाज़े इन पर भी बंद नहीं किए जो तसलीस यानी ट्रिनिटी के कायल हैं। फरमाया, इन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन का तीसरा है, हालांकि अल्लाह ताला तो बस एक ही है। अगर ये अपने कहने से बाज नहीं आएंगे तो इनमें से कुफ्र करने वालों को दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। ये लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जह क्यों नहीं होते, इससे इस्तग़फार क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। कैसे प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला पुकारते। सूरत निसा की आयतें हैं ये। सही हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, और हदीस कुदसी है ये, यपना आदम, ए आदम के बेटे, तुम मुझसे दुआ कर और मेरी तरफ रजू कर, तो मैं तेरे गुनाह माफ़ कर दूँ, इनकी कोई परवाह ना करूं, यानी तेरे गुनाह कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, मुझे इसकी कोई केयर नहीं होगी। इब्ने आदम, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं, फिर भी तुम मुझसे इस्तग़फार करे, तो मैं इसकी परवाह किए बगैर तुझे माफ कर दूं। इब्ने आदम, अगर तू जमीन भर गुनाह करके मेरे पास आए लेकिन शिर्क ना करे, तो मैं जमीन भर गुनाह की मग़फ़रत कर दूं। इसी तरह सही हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अपना हाथ रात में बढ़ाता है ताकि दिन के गुनाहगार को माफ़ कर दे, और दिन में अपना हाथ बढ़ाता है ताकि रात के गुनाहगार को माफ़ कर दे, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से निकल आए। اسی طرح حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، توبہ کرو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگ لے آئے گا، جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو گناہ سے زیادہ شدید گناہ یعنی تکبر میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور آج بھی کئی لوگوں کی ٹون ہوتی ہے، ہم نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، ہم تو جی شروع سے بڑے نیک تھے، یہ وہ۔ ایک اور صحیح روایت میں کہ تم سب خطا کار ہو، خطا کاروں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی سفر میں ہو اور اس کی سواری کا جانور جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے صحرا میں گم ہو جائے، اسے ڈھونڈے پھر نا امید ہو کر سو جائے، حتیٰ کہ بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کا زیادہ سفر اس کے سر کے پاس ہے، اور وہ شدید مسرت میں پکار اٹھے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا، بارے الہی میرے گناہ معاف کر دے کہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ پھر گناہ کرے، پھر ایسے ہی کہہ دے، پھر گناہ کرے، پھر ایسے ہی کہہ دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑتا بھی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، بس میرا بندہ جو چاہے کرے۔ مطلب یہ کہ جب تک بندہ نادم ہو، توبہ کرے، استغفار کرے تو میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو کیا سینے پہ ٹھنڈک نہیں پڑی استغفار سے متعلق اتنی خوبصورت احادیث سن کر؟ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ کی صفت کا یقین ہو جاتا ہے وہ اللہ سے بہت بڑی بڑی امیدیں لگا بیٹھتا ہے۔ میرا ہے نا وہ رب ہے، تم جیسا نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنے تنگ دل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی بہت تھوڑ دلا بننا سکھاتے ہیں کہ بس نعوذ باللہ اللہ سخت ہے، اور بعض لوگوں نے تو اتنا اللہ تعالیٰ کو سخت اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈاڈا کر کے دکھایا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ نے مجھے نہیں بخشنا اور میں تو ایسا اور میں تو ویسا۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ہر ایک جانتا ہے اس کو۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ان چیزوں کے اوپر انسان غور و فکر کرے، توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال بھی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا اور توبہ قبول کرتا ہے، اس سے دل کو سکون کیسے ملتا ہے، اس سے غم کیسے دور ہوتے ہیں؟ تو پہلی تو یہ آیت ہی پڑھ کے، سورۃ زمر کی آیت 53 ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت سینے کی ٹھنڈک ہے، تبھی تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ شرط ایک ہے کہ گناہوں پر اصرار نہ کریں، کبیرہ گناہوں سے دور رہیں، نیکی کے کاموں میں لگیں۔ دیکھیے اس پہ بھی ایک پورا سیشن دینے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کسی ویکینڈ پہ بات کرو گی اس بارے میں کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ بھی درست نہیں کرتے۔ اور حدیث قدسی جو سنی، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3147، کہ اللہ بندے کو امید دلاتے ہیں، تو گناہ کر پھر مجھے پکار اور تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں سے بھی بڑھ گئے تو میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے گناہ کریں، مراد یہ ہے کہ تو کوشش تو کر رہا تھا رکنے کی پھر بھی ہو گئے، بس شرمندہ ہو جا اور آئندہ سے توبہ کر لے، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ غم نہ کریں، کیونکہ ہر چیز قضا اور قدر سے ہوتی ہے، تقدیر پہ راضی رہیں، جھگڑے نہیں، لڑے نہیں تقدیر سے، بلکہ اس کو قبول کریں۔ تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے، کائنات میں کوئی پتہ بھی نہیں کھڑکتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس کی اذن سے ہوتا ہے۔ زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جی اللہ تو قرآن میں یہی کہتا ہے 27واں پارہ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہم تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک اور اموال اور انفس اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کر کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، اگر تنگی لاحق ہو اور صبر کرے تو بھی خیر ہے، اگر خوشحالی ہو اور شکر کرے تو بھی خیر ہے، اور یہ بس مومن کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ये खैर सिर्फ मोमिन को ही मिलती है। एक सही हदीस में है कि तुम मांगो तो अल्लाह से मांगो, मदद चाहो तो अल्लाह से चाहो, जान लो कि सारे लोग जमा होकर भी तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहें तो वही पहुंचा सकेंगे। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया होगा। इसीलिए कि जो नुकसान अल्लाह ने लिख दिया है, इसके अलावा कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। चाहे सब जमा होकर ऐसा करना चाहें, कलम उठा लिए गए, सहीफे सूख गए। इसी तरह एक रिवायत में आता है, जान लो कि जो पहुंचा वो तुमसे छूट नहीं सकता था, और जो तुमसे छूट गया वो तुम्हें पहुंचने वाला ही ना था। और फरमाया, जो तुम्हें लाहक होने वाला है, इससे कलम सूख चुका है, यानी तकदीर लिखने का कलम सूख चुका। मुराद ये है कि जो होगा वो होके रहेगा, तुम्हारे गम करने से, परेशान होने से, तकलीफ में मुब्तला होने से वो टल नहीं सकता। फिर इसी तरह से फरमाया, जो तुम्हें फायदा दे इसकी ख्वाहिश करो, आजिज होकर ना बैठो और ये ना कहो कि अगर मैंने ऐसा और ऐसा किया होता तो ये हो गया होता, बल्कि यूं कहो कि जो हुआ वो अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया था। सही रिवायत, अल्लाह बंदे के लिए वही फैसला करता है जो इसके लिए खैर वाला होता है। अपने रब पे इतबार करें ना। देखिए, हमें अपने माँ बाप पे ट्रस्ट है, शोहरों पे है, किसी हद तक रिश्तेदारों और बच्चों पे है ना, तो अल्लाह ताला पे ट्रस्ट क्यों नहीं होता? हम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? उसके बारे में हमारे दिल में क्यों बदगुमानी आती है? शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह से पूछा गया, क्या मासीयत यानी गुनाह बंदे के लिए खैर है? यानी गुनाह करना, नाफरमानी करना, इसमें कोई खैर है? कहा हाँ, अगर इसके बाद नदामत, तौबा, इस्तिग़फ़ार और इनकिसारी हो। अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को बुरा समझो और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और जिससे तुम अच्छा समझो वो तुम्हारे लिए शर हो। अल्लाह वो जानता है जो तुम नहीं जानते। और ये सबक तो लॉकडाउन ने सिखा दिया, लेकिन तकदीर के साथ लड़ने की बजाय उसको मान लीजिए। बुखारी की रिवायत जो हमने पढ़ी है अबू हुरैरा से, कि जो कुछ होने वाला है इस पर कलम खुश्क हो चुका, तो सुकून नहीं मिलता इसको सुनकर? चीखें, चिल्लाएं, तड़पें, होने वाली बात होगी। देखिए, बच्चों को इंजेक्शन लगता है ना, वो तो लगना ही है। दर्द किसको कम होगा जो अपने आप को ढीला छोड़ देगा? अमूमन इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जिस्म को ढीला छोड़ दें। आप इंजेक्शन को तकदीर की कोई बात लिख लें, कोई सख्त फैसला, रिलैक्स, ईजी गोइंग, टेक अ डीप ब्रेथ, कूल, काम, बस देखिएगा, पता भी नहीं चलेगा ज़िंदगी का वो फेस बड़े धीरे से गुजर जाएगा। तहले इस्लाम का अकीदा है तकदीर क्या है, हर मामले में खैर है, तंगी पर सब्र, खुशहाली में शुक्र। और मैं एक जुमला अपनी तरफ से बोल दूँ, इससे ज़्यादा हमारी औकात भी नहीं है, ज़्यादा सर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो गया ना तो सस्ते छुटे, क्योंकि हमारे करतूत और हमारे गुनाह इतने हैं कि बिस्तरों से ना उठें तो अल्लाह को हक कैसा करने का? करें क्या? तकदीर का मतलब ये नहीं कि फिर इंसान कोशिश और मेहनत ना करे। फ़ायदेमंद चीज़ की ख्वाहिश कीजिए, इसको हासिल करने की पूरी कोशिश तदबीर के साथ कीजिए, फिर भी हासिल ना हो तो ना उम्मीद ना हो। ये है साइकिल ऑफ द तकदीर। आगे चलिए, गम ना करो, तंगी दूर होने की उम्मीद रखो। ये भी एक बड़ी खूबसूरत स्टेट ऑफ माइंड है। और वो क्या है कि बस तकलीफ दूर होने वाली है, बीमारी नहीं, अब ठीक हो जाएगी, नहीं दुकानें अब खुलने लगी हैं, नहीं, कुछ नहीं होगा। यानी कुछ लोग इस किस्म के होते हैं कि उनको मायूसी छू के भी नहीं जाती, इसलिए कि लोग मायूस करते हैं, मायूसियों में डालते हैं, और अल्लाह ताला आपको सिखाते हैं कि आप दुखी ना हो, परेशान ना हो, जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है उसके बारे में बदगुमान ना हो। इमाम तिरमिजी की रिवायत है कि बेहतरीन इबादत तंगी दूर होने की उम्मीद है। मैं अक्सर ये हदीस कोट करती हूँ, लोग मानते नहीं है कि ये हदीस है और सही रिवायत है ये। यानी इंतजारुल फर्जी मिन खैरिल इबादा। बस एक बीमार है, वो कहते हैं भाई क्या हाल है? कहते बिल्कुल ठीक हूँ, बस पहले से बहुत बेहतर हूँ, ठीक होने वाला हूँ। चाहे उसकी मौत का वक्त करीब आ गया हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ये जुमले बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अपने लिए मुस्तकिल हालत रखिए, बीमारी, परेशानी, दुख से निकलने की उम्मीद के साथ। क्या सुबह जल्द आने वाली नहीं? मुसीबत ज़दों और रंजोरों के लिए, यानी वो लोग जो मुसीबत ज़दा या रंज में हैं, इनके लिए सुबह तुलू हो रही है, इसका इंतज़ार करें। अल्लाह से मदद की उम्मीद रखें। अरब कहावतों में से है कि जब रस्सी बहुत सख्त हो जाती है तो टूट जाती है। कभी किसी रस्सी को कुछ दिन बाहर छोड़ दें, बारिश का पानी पड़े, फिर अगले दिन खूब सूरज चढ़े, सूख जाए सूख जाए, आप एक दिन देखें कड़क करके टूट जाएगी। कभी चारपाइयाँ बाहर रखी हों तो उसके साथ ये हुआ होगा। तो मतलब क्या है कि जब मामलात ज़्यादा बुहरानी वाले होते हैं तो इनसे खुलासी भी जल्द मिलने का यकीन करें। इस पे भी अरबी की एक कहावत है कि ज़्यादा कतल अमरू, जब मामला शदीद सख्त हो जाता है ना, तंग हो जाता है, तो खैर पैदा हो जाती है। जैसे ब्लड प्रेशर लेता है ना कोई, तो जितना दबाएं 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 ऐसे लगता है अब जान निकलेगी, एकदम छोड़ देता है। तो जब बहुत हालात तंग हो ना, तो उसके पीछे मदद की उम्मीद रखें। अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजल्लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए खुलासी पैदा करेगा, सूरह तलाक की आयत है। और फरमाया, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसकी खताएं माफ़ कर देगा और इसको दुगना अजर देगा। जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह इसके मामले को आसान बना देगा। अरब कहा करते थे, मुश्किलात पड़ती हैं फिर इनके बादल छट जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। ये यकीन तो हो पहले। एक शायर ने कहा, जिसका मफहूम यह है, कितनी खुलासियाँ मायूसी के बाद हासिल हुई, कितनी आसानियाँ नाउम्मीदी के बाद हुई। अर्श वाले से जो खुशगुमानी रखता है वो कांटेदार दरख्त से भी अच्छा फल तोड़ सकता है। हाईलाइट कर रहे हैं इस जुमले को। और सही रिवायत में कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, वो जैसा गुमान रखेगा वैसा ही होगा। जी, हमेशा अच्छा गुमान रखा करें। एक सहाबी बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे थे, आपने पूछा सुनाओ कैसा लग रहा है। कहा कि नबी, एक तरफ तो अपने गुनाहों से बड़ा ही खौफजदा हूँ, पर दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी बड़ी है। तो आपने फरमाया, अंत मोमिन अल ईमान बैन अल खौफ वर्रिजा। जब रसूल भी मायूस हो गए और इनकी कौम के दिल में ये गुमान होने लगा कि इनको झूठा बहलावा दिया गया, तो इनके पास हमारी मदद आ गई, हम जिसे चाहते हैं निजात देते हैं। बस मुफस्सरीन का कौल है, बाज़ लोग इसे हदीस के तौर पर भी बयान करते हैं, कि एक तंगी दो आसानियों पर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना माल उसरी युसरा, उसर के साथ युसर है। और फरमाए, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है, इन्ना रहमतुल्लाही करीब मिनल मुहसिनीन। हदीस में है कि जान लो कि मदद सब्र के साथ आती है और मुसीबत के साथ इससे रहाई भी होती है। शायर कहता है, जब किसी मामले में ज़्यादा तंगी हो जाए तो अब इससे रहाई की उम्मीद कीजिए। एक और शायर कहता है, कितनी आंखें बेदार हो गईं, कितनी सो गईं, ऐसे मामलात हैं जो होंगे या नहीं होंगे, इसलिए जितना भी मुमकिन हो रंज को छोड़ दो, गमों दुख को पाले रखना एक जुनून है। कल जो हुआ इस वक्त भी तुम्हारा रब तुम्हारे साथ था, आने वाले कल में भी वो तुम्हारे साथ रहेगा। एक और शायर के कौल का मफहूम यह है, तकदीर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, इसलिए तुम खाली उस जहन होकर सो जाओ। अल्लाह ताला तो पलक झपकते में हालात बदल दिया करता है, जिसको हमारे मुहावरे में कहते हैं, ठंडा दूध पी के सो जाओ। क्या आपके कंधों से बोझ हल्का नहीं हो रहा इस सीरीज को सुनते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, दिल की कैफियत पहले ही ये थी, अब इसकी खुशी है कि इसके जरिए कईयों के गम हल्के हो रहे हैं। देखिए, गम उठाकर फिरने से बेहतर है किसी का बच्चा थोड़ी देर उठाकर फिर ले, माँ को भी सुकून मिल जाए। गम पालने से बेहतर है एक बिल्ली पाल लीजिए, उसको दूध पानी देते रहें, उसे भी खुशी मिलेगी। कुछ लोगों को आदत होती है गम पालने की। तो देखिएगा क्या सीखा है अभी तक, दोहरा लेते हैं। बेहतरीन इबादत तंगी दूर होने की उम्मीद है, इसके ऊपर खुद को ज़रूर परखिएगा। बस मेरे तो हालात बदलने ही वाले, कुछ लोग सारी ज़िंदगी यही कहते रहते हैं और दुनिया से चले जाते हैं गोया के मुस्तकिल इबादत की हालत में थे। क्योंकि रात के बाद दिन है, घबराहट के बाद सुकून है, आंसू के बाद मुस्कुराहट है, और उम्मीद के बाद इम्कान है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और अरब कहावत के, मुश्किलात पड़ती हैं फिर इनके बादल छट जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। अच्छा, आपने कभी नोट किया, बहुत क्लाउडी हो और एकदम क्लाउड्स हटें, क्या निथरा हुआ सूरज बाहर आता है? याद रखिए, दिल पर आज गमों का बोझ है ना, जब ये हटेगा ना तो रूह और भी सरशार होगी इंशाल्लाह ताला। फिर ये सीखा कि अल्लाह ताला के साथ हुस्ने सन रखना है, क्योंकि आपने फरमाया हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। ये रिवायत तिरमिज़ी में 2388 नंबर की थी। तो यहाँ ज़रा सा एक गैप लेकर जो अभी तक पढ़ा इसको जज्ब करते हैं। क्या सीखा? गम न करें, क्योंकि हुजन और मायूसी और अनदोख के रहते आपके ख़जाने के अम्वाल, बेहतरीन इमारतें, शादाब बागात, ये सब आपके गम और अनदोख में बस इजाफा ही करेंगे। यानी दुनिया की चीज़ों का इतना गम ना किया करें, गम ना करें। अगर गम ने दिल में बसेरा कर लिया है, आंखों में फैल गया है, पहलुओं में चिपक गया है, खाल में छुप गया है, तो तबीबों की जड़ी बूटियाँ, फार्मासिस्ट के तजुर्बात और डॉक्टर्स की तशखीस भी आपके किसी काम ना आएगी। गम ना करें, आपके पास दुआ है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चौखट पर गिर सकते हैं, शाहों के शाह के दरवाजे पे गिड़गड़ा सकते हैं। वो कौन है? कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा। जी, सूरह आले इमरान में अल्लाह की शान है ये। रात का आखिरी पहर आपके पास है, आप सजदे में गिरकर अपनी पेशानी रगड़ सकते हैं। गम न करें, अल्लाह ने आपके लिए ज़मीन और इसके असबाब पैदा किए हैं, आपके लिए शादाब बागात उगाए हैं, हर तरह के जोड़े रखे हैं, खजूर के फलदार दरख्त बनाए हैं, चमकते तारे आसमान में टांग दिए हैं, और दरिया और तालाब अब आप ही के लिए बनाए हैं। लेकिन फिर भी आप रंजीदा हैं, क्यों? खुद से पूछिए, मुझे मसला क्या है? जबकि ठंडा मीठा पानी पीने को और सांस लेने को साफ सुथरी हवा मुयस्सर है, आप सेहतमंद हैं, अपने पैरों पर चल रहे हैं, और सबसे बढ़ के वजालना नौमकुम सुबाता, क्या इत्मीनान से रात में सोते हैं। यकीन करें, कमी सिर्फ शुक्र की है। किसी भी इंसान को बहुत ही दुखी देखें और रोता चीखता चिल्लाता शिकवे करता, दिल में सोच लीजिए कि शुक्र हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर दोहरा लेते हैं जो सीखा है। नंबर एक, मदद सब्र के साथ है। जब किसी मामले में ज़्यादा तंगी हो जाए तो रहाई की उम्मीद कीजिए, जितना मुमकिन हो रंज को छोड़ दें, और आपके पास तो शाहों के शाह का दरवाज़ा है। अल्लाह ने आपके लिए ज़मीन और इसके असबाब पैदा किए हैं, तो फिर क्या करें? खुद से कहिए। अगला पॉइंट, गम ना कीजिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फार कीजिए। क्यों? इसलिए कि आपका रब बहुत माफ़ करने वाला है। और सूरत नूह में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, तो मैंने कहा इस्तग़फार करो अपने रब से, क्यों? इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीन। अल्लाह के पैगाम क्या है, खुलासा बताया आपको, आयत सुन लीजिए। तो मैंने कहा अपने रब से इस्तग़फार करो, वो बहुत माफ़ करने वाला है, आसमान से तुम्हारे ऊपर मूसलाधार पानी बरसाता है, तुम्हें बेटे और माल अता करता है, तुम्हारे लिए बागात और नहरें निकाल रखी हैं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फार करें ताकि सुकून और दिल का आराम आपको मिले, रिस्क हलाल नसीब हो, सालेह औलाद अता हो, और मूसलाधार बारिश बरसे। और ये कि अपने रब से इस्तग़फार करो, फिर इससे तौबा करो, एक अजल मुसम्मा तक तुम्हें अच्छा सामान्य ज़िंदगी मिलेगा। हर फजल वाले को अपनी बख्शिश से नवाजता है। हदीस में जो ज़्यादा इस्तग़फार करता है, अल्लाह ताला इसे हर गम से निजात देते हैं और हर बुहरान से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। और सैयदुल इस्तग़फार को लाजिम कीजिए, जो इमाम बुखारी के अल्फाज में जो हमें पहुँची अल्लाह के नबी से, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबू लक बि नेमतिका अलैया व अबू बि ज़म्बी फ़ग़फिर ली फ़इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूब ला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंता। अपने गुनाहों को रब के सामने पेश कर दें, जितनी इस्तग़फ़ार होगी अल्लाह उतना माफ़ करेगा। तो क्या पता चला कि इस्तग़फ़ार हर गम का इलाज है? इसके मज़ीद बहुत सारे फ़वाद हैं, दिल का आराम, रिज़्क़ हलाल का बायस, नेक और साले हालात का हसूल, और बारिशों का बायस है, और अल्फाज कैसे मोहब्बतों में डूबे हुए हैं। ये बुखारी के अल्फाज हैं जो आपको सुनाए गए। तो इसके ऊपर गौर व फिक्र कीजिए, सुबह की दुआ में और शाम की दुआ में शामिल कर लीजिए, तो 70,000 फरिश्तों की दुआएं मिलने का जरिया है इंशाल्लाह। और अगला पॉइंट भी ले लीजिए, गम ना कीजिए, बस हमेशा अल्लाह का जिक्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। और फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। और मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाले और जिक्र करने वाली औरतें, यानी अल्लाह को कसरत से याद करने वाले और याद करने वालियाँ। और एक जगह यूं फरमाया, ईमान वालों, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, सुबह शाम इसकी तस्बीह पढ़ो। और एक जगह फरमाया, ईमान वालों, तुम्हारे माल और औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। और फरमाया, जब भी भूलो तो अल्लाह को याद कर लो। और फरमाया, जब खड़े हो तो अपने रब की हमदो सना करो। रात के वक्त और सितारों के छुप जाने के वक्त भी इसे याद कर लो। और फरमाया, ईमान वालों, जब तुम्हारी मुठ भीड़ यानी आमना सामना किसी दुश्मन गिरोह से हो तो जम जाओ, अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सही हदीस में, किस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और जो याद नहीं करता, जिंदा और मुर्दा जैसी है। एक बार आपने फरमाया, मुफरीदून, आगे बढ़ जाने वाले कौन, यानी आगे बढ़ गए। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मुफरीदून कौन है? आपने फरमाया, वो मर्द और औरतें जो कसरत से अल्लाह को याद करते हैं। और एक सही रिवायत में आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर अमल ना बताऊं जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद हो, और तुम्हारे लिए सोने चांदी खर्च करने से और दुश्मन की मुकाबला आराई से, जिसमें तुम और दुश्मन एक दूसरे की गर्दन मारने की फिक्र में रहते हो। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, ज़रूर बताइए। फरमाया, वो अल्लाह का जिक्र है। एक सही रिवायत में यूं है कि एक शख्स ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल, इस्लाम के काम तो बहुत हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यदि बहुत कुछ नहीं कर सकता, बस आप मुझे ऐसी चीज़ बता दे जिससे चिमटा रहूँ। फरमाए, तुम्हारी ज़ुबान हमेशा अल्लाह की याद से तर रहनी चाहिए। तो क्या सीखा? गमों का इलाज अल्लाह का जिक्र। देखिए, बच्चा माँ को याद करता है ना, बच्चा अपने ध्यान में मगन है, माँ पुकारती, आ जाओ, खा लो, पी लो, सो लो, उसको खेलना खेलना है। कभी देखे मुर्गी के बच्चे की तरह गर्दन डाल के बैठा हुआ है, बीमार है बेचारा, फिर माँ का दामन नहीं छोड़ता, मामा मामा मामा। तो आपको मुझे भी कहना है, अल्लाह या रहमान या रहीम या कुद्दूस, क्योंकि सूरत रात आयत 28 में अल्लाह की बात सुन चुके हम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद से दिल सुकून पाते हैं। तो तस्बीह करनी है, ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र में तर रख कर, ताल्लुक़ बिल्ला कायम करना है अल्लाह को याद करके, वो आपको याद करेगा। और मतलूब यह है कि माल और औलाद तुम्हें अल्लाह से गाफिल ना करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है, और इसके होंठ मेरे जिक्र की वजह से हरकत में होते हैं। इब्ने माजा की रिवायत है 3792। और अल्लामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत बात कही, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गज़ाली हो, याद रखिए अपने अपने वक्त के बेहतरीन मुफस्सरीन थे, कुछ हाथ नहीं आता बे आखे सहरगाही, यानी बड़े से बड़े मुफस्सरीन और उस्तादों से भी बंदा फ़ायदा नहीं उठाता जब तक उसको सुबह के वक्त तहज्जुद में अल्लाह से मांगना नहीं आ जाता, उसका जिक्र करना नहीं आता। तो अब आप देखिए, चूंकि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी पढ़ रहे हैं ना, तो शायद हमें महसूस भी ना हो रहा हो कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ है हमारे सामने। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने गम, अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें अल्लाह के सामने पेश करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।